ओम शांति। मुझ जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई भी नहीं। इस नशे में टिक जाए, मुझ जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई भी नहीं।
हेलो मैम, इसको कॉपी कर लीजिए।
कुछ क्षणों के लिए टिक जाएंगे, मुझ जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई भी नहीं। नशा चढ़ाएंगे खुद को, स्वयं भगवान ने मुझे चुना है, आज बाबा ने कहा भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे थे। हर बच्चे के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा था। चेक करें क्या मेरे मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। चेक करें। कैसे पता लगेगा मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है या नहीं? वो खुशी से, वो संतुष्टता से, हल्केपन से, एकदम हल्के हो जाएं, खुशी से भरपूर हो जाएं, दिल गीत गाने लगे, मुझ जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई भी नहीं। नशा चढ़ाएं खुद को, मुझ जैसा भाग्यवान इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। जहां भाग्य है वहां खुशी है, लेकिन होता क्या है, सब कुछ होने के बाद भी हमारा ध्यान कहीं बार उन चीजों की ओर होता है जो हमारे पास नहीं है। देखिए बाबा ने आज क्या विशेष बात कही। इस दुनिया में कोई कितना भी भाग्यवान हो, दुनिया के हिसाब से किसको समझते हैं दुनिया में भाग्यवान? जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसका नेम फेम ज्यादा है, जिसकी पद पोजीशन ज्यादा है, पावरफुल है, जो जिसका शरीर सुंदर है, ये तो समझते हैं हम भाग्यवान। बाबा ने कहा इस दुनिया में कितना भी कोई भाग्यवान है, पर परंतु आप बच्चों में नंबरवार होते हुए भी, भाग्यशाली में नंबरवार है, नंबरवार होते हुए भी जो लास्ट भाग्य वाला बच्चा है वो भी उनसे बहुत आगे है। क्यों? भगवान मिला है मुझे। कौन मिला है? भगवान मिला है मुझ जैसा भाग्यवान। इस पॉइंट पर टिक जाएं। होता क्या है, हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, हम टिकते नहीं हैं एक सोमान पर, तभी उसके स्वरूप नहीं बन पाते हैं। मुझे कौन मिला है, मुझ जैसा भाग्यवान, इस दुनिया में कोई भी नहीं। पूरा दिन इस नशे में रहे, और ये नशा ऐसा है जो बाकी सब हद के नशे, नेगेटिव नशे खत्म कर देता है। रूहानी नशा है ये, भगवान के प्यार का नशा है। चलिए, जो बाबा ने आज कहा उसको थोड़ा सुनते हैं। बाबा ने कहा, देखिए मुरली को सुनने की सही विधि, टिकना पड़ेगा। अब आपने पढ़ा कि आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पद्म भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। पहले तो स्पीड स्लो होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप। जब आप मुरली पढ़ रहे हैं, क्योंकि सुनते हुए तो सामने वाले पर डिपेंड करेगा, पर जब आप पढ़ रहे हैं स्पीड को स्लो कर दें, स्लो कर दें स्पीड को। जितना स्पीड स्लो होगी उतना ही अंदर तक गहराई में जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते रहेंगे हम। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पद्म भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। अब क्या करें, एक तो तरीका है चार पेज हम पूरे के पूरे पढ़ दें, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो मुरली का पॉइंट है, मुरली में ही रहेगा। हमें क्या करना है, बस ये दो लाइनें बहुत हैं कुछ देर चिंतन करने के लिए कि बाबा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहा है, मस्तक में चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। बैठ जाएं, सीन को सामने लाएं। बाबा कैसे देख रहा है मुझे, बाबा की नजरों से नजर मिलाएं। बाबा मेरे मस्तक में चमकता हुआ प्रकाश देख रहा है, भाग्य का सितारा चमक रहा है। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा। टिक जाना है ऐसे। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबर वार, भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के, आज धैर्य से सुनेंगे इस बात को, धैर्य ले आए जीवन में। ऐसा ना हो हम सोचें अच्छा ये पॉइंट तो समझ में आ गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं, गहराई में जाएं, गहराई में जाना सीख लें। आनंद ही आनंद है गहराई में। नंबर वार, भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे, पैसा नेम फेम यही है ना, करोड़ों अरबों रुपए हैं, उनके आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसीलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। सोचें, बाबा को मेरे भाग्य पर नाज है, खुश होता है वो मेरे भाग्य को देखकर, नशा चढ़ेगा। बाप दादा भी कौन से गीत गाते हैं, कोशिश करें अभी टाइप मत करें, जब कहा जाएगा तभी टाइप करें, इसको नियम बना रहे। बाप दादा भी सदा वहां मेरे भाग्यवान बच्चे, देखो ये खुशी से सुनते जाएं, प्यार से सुनते जाएं, उसको अनुभव करते जाएं, यही तो योग है। बाप दादा भी सदा वहां मेरे भाग्यवान बच्चे, वहां एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गा रहे हैं। चलो एक मिनट के लिए बाबा के ये गीत सुनते हैं। गीत सुनेगा इन कानों से नहीं सुनेगा, दिल की गहराई से सुनेगा। सुने बाबा मेरे लिए क्या गीत गा रहे हैं। अंदर तक जाने दें इस मैसेज को, भगवान मेरे लिए गीत गा रहा है। वहां मेरे भाग्यवान बच्चे, वहां एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, बाबा मेरे लिए गीत गा रहे हैं। क्या चाहिए और जिसे हम 63 जन्मों से ढूंढ रहे थे, जिसकी एक बूंद के हम प्यासे थे, स्वयं भगवान गीत गाते थे, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू आएगा सब कुछ कुर्बान कर देंगे, वो आ गया है, मुझे उसकी पहचान मिल गई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, अपने भाग्य को देखकर मुझे खुशी होती है। एक तरफ भगवान और एक तरफ भाग्य है। दिल गीत गा रहा है, मुझ जैसा खुश नसीब, मुझ जैसा भाग्यवान इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। बार बार अपनी घोट तो नशा चढ़े। नशा क्यों नहीं चढ़ता है, खुशी क्यों नहीं होती है, टिकते नहीं है हम एक पॉइंट पर, हमें टिकना होगा। धैर्य चाहिए, अनुभव करने के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य नहीं है, अनुभव नहीं कर पाएंगे। धैर्य है, आप सबने आज का अमृत वेला किया होगा, कोई कह रहे हैं कि लिंक नहीं आया, क्या कर सकते हैं, जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल है इस पे एक बटन आता है रेड कलर का जिसपे सब्सक्राइब लिखा होता है, जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी डेली अपडेट्स होंगे, जैसे अमृत वेला लाइव हुआ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप अटेंड कर पाएंगे। नहीं तो हर रोज लाइव होता है, शायद कुछ आप नहीं कर पाए होंगे। अमृत वेला जरूर करना है, 2 बजे का जो अमृत वेला चल रहा है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल पर, बहुत सुंदर आत्माओं को अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि अमृत वेले को अगर हमने पावरफुल बना लिया और अमृत वेले उठते ही सबसे पहला संकल्प करना है, वाह मेरा भाग्य है, वाह 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 के गीत गाने शुरू कर दीजिए, जिंदगी वाह वाह हो जाएगी। हाय हाय के गीत गाते रहेंगे तो जिंदगी हाई हाय हो जाएगी। डिसाइड आपको करना है, आपको अपनी जिंदगी कैसी बनानी है। आप चेक करें, जो बहुत कंप्लेन्स करते हैं उनका जीवन भी दुखों से भरपूर हो जाता है, और जो कंप्लेन्स छोड़ देते हैं। हमने अपने जीवन में कुछ चीजें धारण की हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और बहुत जल्दी हमें कुछ ऐसी आत्माएं चाहिए। देखिए, एक ग्रुप भी बन रहा है, 2 बजे उठने वाली आत्माएं, और सिर्फ 2 बजे उठने से कुछ नहीं होता है। देखिए, एक बात को मैं समझा दूं, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों चाहिए। अगर आप 2 बजे उठकर लेकिन क्वालिटी नहीं है तो भी गलत है। तो हमें धीरे धीरे बैलेंस लेकर आना है, परंतु आप तैयार हो जाएं। ये जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल है, ये सिर्फ भाषण के लिए नहीं है। आप में से जो जो आत्माएं खुद को परिवर्तन करने का संकल्प लेती हैं, हम एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ जो हमारा ग्रुप है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, हमारा लक्ष्य है कुछ ऐसी आत्माएं यज्ञ में सामने आए जो कॉन्फिडेंटली कह सकें, दिल की गहराई से कह सकें कि मेरे जीवन में कोई कंप्लेन नहीं है, मेरा मन कभी किसी भी बात में, कितनी भी बड़ी बात आ जाए, डिस्टर्ब नहीं होता है, मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, किसी के लिए घृणा नहीं है। धीरे धीरे अपने आप को इतना परिवर्तन कर दें कि जब ये ग्रुप बने, जब प्रत्यक्षता होनी हो बाबा की, तब आप तैयार रहें। अगर पूछा जाए कौन है जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले की भावना अंदर से पूरी निकाल दी है, तो आप लक्ष्य बना लें कि आपका हाथ खड़ा हो। किसी ने पूछा कभी योग लगता है कभी नहीं लगता है, उसका एक ही रीजन है, जिस समय मन में विकार है, जिस समय मन में बातें हैं, जिस समय मन डिस्टर्ब है, योग लग नहीं सकता। 1 मिनट के लिए मन थोड़ा शांत हुआ, कोई अच्छी बात सुनी, अच्छी क्लास सुनी, फिर धीरे धीरे थोड़ा समय उसका प्रभाव रहता है। तो आप लक्ष्य रखें कि मुझे ऐसा बनना है। बहुत जल्दी ऐसा ग्रुप तैयार होने वाला है, आप उसके पार्ट बने। लेकिन धीरे धीरे ये लक्ष्य रख लें कि कुछ भी हो जाए, मुझे अंदर से प्योर हो जाना है। आज की मुरली से हम सुनेंगे जो बाबा ने आज कहा इसके बारे में, 6th पॉइंट। जो 10 पॉइंट्स थे अव्यक्त मुरली से चुने हुए, 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। तो आप भी आना चाहते हैं, देखो हाथ खड़ा कर रहे हैं, और ऐसा बनना ही है। बस आप थोड़ा थोड़ा और गहरे जाते जाएं, जितना पुरुषार्थ किया है बहुत अच्छा है, लक्ष्य को और बढ़ाते जाएं। ऐसे ग्रुप का मुझे हिस्सा बनना है जो दुनिया के सामने रख सकें कि हमारा आपस में रूहानी प्यार है मेरे दिल में। ये मैं आपके सामने प्रतिज्ञा कर सकता हूं कि मेरे दिल में किसी एक आत्मा के लिए भी नफरत नहीं है। पास्ट में कुछ भी किसी ने मेरे साथ किया, अब कोई कुछ कर रहा है, नहीं, इट डज नॉट मैटर। मेरे दिल में, ये मैं सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल जीवन में है ये, मेरे दिल में किसी भी आत्मा के लिए नफरत नहीं है, घृणा नहीं है। मेरे दिल में हर आत्मा के लिए प्यार ही प्यार है, चाहे वो गुस्सा कर रहा है, गलत बोल रहा है, कोई बात नहीं, मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है किसी के लिए, किसी के लिए भी ईर्ष्या नहीं है। दूसरा आगे बढ़ता है तो खुशी होती है। धीरे धीरे ऐसा हमें ग्रुप क्रिएट करना है जो बाबा देखना चाहे, ऐसा संगठन ऐसा तैयार करना है जो बाबा देखना चाहता है। तभी बाबा प्रत्यक्ष होंगे। मुझे कभी भी किसी से कंप्लेन नहीं होती है, बाबा के सामने जब बैठते हैं आज तक कंप्लेन नहीं की। आज तक मींस पिछले 2-3 साल जो पुरुषार्थ चल रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, बाबा को सुनाया ही नहीं कभी। बैठे और बाबा को कहा, बाबा नो कंप्लेन्स। बहुत पहले मैंने एक मुरली में सुना था, तब से बाबा नो कंप्लेन्स, कोई कंप्लेन नहीं है। यह सही हो जाए तो सही हो जाएगा, ऐसा हो जाए, कुछ चीजें ऊपर नीचे हैं, पर उससे मेरी स्थिति पर, मेरी स्थिति आधारित नहीं है उस पर। वेरी गुड, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। अभी 108 की माला बन चुकी है, ये पूछ रहे हैं, आप बनिए। बाबा ने तो कहा है आप अंत में भी बन सकते हैं, लास्ट ऑफ फास्ट बन सकते हैं, लेकिन विश्वास आपको है या नहीं है वो आप चेक करें। एक दिन के अंदर भी आप महापरिवर्तन कर सकते हैं, इस बात को समझ लें। भगवान का ज्ञान है ये, भगवान का ज्ञान है, साधारण नहीं है ये। स्वयं भगवान आपके साथ है, महापरिवर्तन कर सकते हैं आप एक दिन के अंदर। 10 साल नहीं चाहिए, 20 साल नहीं चाहिए, आत्मा चाहे तो महापरिवर्तन हो सकता है, डीप परिवर्तन हो सकता है एक दिन के अंदर। बिल्कुल अभी बनाएंगे, बस आपको क्यों ये बताया, ताकि आपको लक्ष्य सामने रहे कि मुझे फरिश्ता बनना है। और अभी जैसे जैसे आप फरिश्ता बनते जाएंगे, बाबा देख रहा है, अपने आप ही आपसे सेवा होनी शुरू हो जाएगी। आप चाहे घर पे रहते हैं, चाहे बंधन है, कैसे बाबा कराएगा वो बाबा की जिम्मेवारी है। बस आप फरिश्ता को सामने रखकर पुरुषार्थ करते जाइए। अपने अंदर जो भी सूक्ष्म कमजोरियां हैं, गहरी चेकिंग करें और उसे निकाल दें। तो बहुत सुंदर है, कितनी आत्माएं ऐसा बनना चाहती हैं और बनेंगी भी। और फिर हम उसके बाद बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सेवाएं होंगी उससे। बस आप एक काम करना शुरू कर दीजिए, भगवान के महावाक्यों पर विश्वास। बाबा कहते हैं खुद को परिवर्तन कर लो, विश्व परिवर्तन का कार्य तुमसे ड्रामा कराएगा। कैसे कराएगा उसमें नहीं जाना है, आप अपनी स्थिति को ऐसा बना लें, विकार निकाल दें अंदर से। बाबा ने कहा, अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति भाई जी, पहले मैं पैर मोड़कर बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन 2 बजे वाला अमृत वेला कर रही हूं, तब से दर्द भी गायब हो गया है। वेरी गुड। जितना जितना आप हिम्मत रखते जाएंगे, भगवान की मदद मिलेगी। चलिए अभी हम रुक जाते हैं। बाबा के महावाक्य सुनते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं, जब भगवान के महावाक्य सुन रहे हों, ये ध्यान रखें, स्टॉप। भगवान के महावाक्य हैं ये, रिगार्ड रखना है। मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विक्रम का किचड़ा नहीं हो, दिल में अगर किचड़ा है बाबा बैठ नहीं सकेगा, बाबा का प्यार ठहर नहीं सकेगा। कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का किचड़ा नहीं हो, तो ऐसी जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सबका प्रिय बनना है, सच्चे बनते जाएं। सच्चे का मतलब क्या है? अंदर से जो भी खराब संस्कार है, रावण के संस्कार है, जो आपके संस्कार हैं ही नहीं, छोड़ दीजिए उन्हें। बस ये मेरे संस्कार हैं ही नहीं। मेरे संस्कार क्या हैं? दिव्य संस्कार, आदि संस्कार, सबके प्रिय बन जाएंगे। सच्चे पर साहेब राजी होता है। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट हम सुनते हैं, फिर और गहराई में चलेंगे। संस्कार मिलन की रास करने के लिए, अगर आपको लगता है आप संस्कार मिलन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी आत्माओं के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक रीजन बाबा बता रहे हैं। संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। नेचर को इजी बना ले, सरल बना ले। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन ना हो। बहुत सी आत्माओं की ये कंप्लेन है कि पुरुषार्थ का बोझ है उन पर, पुरुषार्थ का बोझ है, ये करना है, ये अभ्यास करना है, ये मुरली पढ़नी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इतने अभ्यास, एक घंटे बाद ये करना है, दो घंटे बाद ये करना है। जीवन को सरल बना लें। लाइफ इज वेरी इजी बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। सदा याद रखें, सरल हो जाएं, हल्के रहना सीख लें। हल्के रहना ही पुरुषार्थ है। अगर आप हल्के नहीं हैं, कितनी देर भी योग करें, कितनी देर भी सेवा करें, उसका उतना रिजल्ट नहीं होगा। संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। सरल बना लें अपने स्वभाव को। बालक, बच्चा जो होता है ना, वो सरल होता है। सरल बन जाएं। मैं भगवान की संतान हूं, मेरे जीवन की जिम्मेवारी बाबा की है। अंदर से साफ होते जाएं। मुझे विकारों को खत्म करना है, सीट पर सेट रहना है, अपने प्रकाश स्वरूप में रहना है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा रह नहीं सकता। जीवन बहुत आसान है, पुरुषार्थ बहुत आसान है, मुश्किल मत बनाएं। बिना लक्ष्य के अगर आप पुरुषार्थ करेंगे, मुश्किल कर देंगे, आप खुद ही मुश्किल कर देंगे। कभी सोचेंगे ये करें, कभी सोचेंगे ऐसा करें। दिन में एक दिन, एक समय बैठकर लक्ष्य क्लियर कर लें, पूरा दिन क्या अभ्यास करना है, बस टिक जाएं फिर उस पर। बाबा कहते हैं, यह है, ये ध्यान से सुनना, यह मेरे संस्कार हैं, यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। तेज बोलना, बहुत सी आत्माएं एक्सक्यूजेस देती हैं। वो क्या कहती हैं कि तेज बोलना ना मेरा संस्कार है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूं, ऐसे ही बोलता हूं। नहीं, मेरा संस्कार है ही नहीं, ये रावण का संस्कार है। ये मेरा, मैंने जो पुरुषार्थ किया था मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। शुरू शुरू में 4 महीने, 4 से 4.5 महीने हमने केवल एक बात पर पुरुषार्थ किया था, मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो। अगर आप उसे करेंगे, अगर आपको पुराने संस्कार तंग करते हैं, पुरानी बातें तंग करती हैं, पास तंग करता है, आप इस पुरुषार्थ को करें, 1 महीना 2 महीना लक्ष्य लेकर आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो पुरुषार्थ क्या था? बार बार सुबह उठते ही, दिन में कई बार बैठकर लिखता था मैं। लिखा क्या? डेट लिखी 21 तारीख 21/6/2020, टाइम लिखा और फिर लिखा, ये मेरा नया जन्म है, अब से मेरा नया जन्म है। पुरानी बातें खत्म, पुराने संस्कार खत्म, वो पुराना है, अब से एक नई शुरुआत, नया जन्म, नई शुरुआत। मान लीजिए गुस्सा आया या जो संस्कार मुझे तंग कर रहा था वो आया, तो सिर्फ उसको देखना और ये कहना कि ये पुराने जन्म का संस्कार है। धैर्य से कहना इस बात को, डरना नहीं उन संस्कारों से, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वापिस क्यों आ रहा है, वापिस आ रहा है, आपको क्या कहना है सिर्फ। और ये मैं थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल में आप करके देखना, आप कहना ये मेरा संस्कार नहीं है, ये पुराने जन्म का संस्कार है। अब भी हमसे कोई पूछता है अपनी जीवन कहानी के बारे में, तो मुझे लगता है जब से मैं ज्ञान में आया या ज्ञान से 4-5 महीने पहले जो इंसिडेंट्स हुए, उससे पहले का जो जन्म है वो जैसे कि पुराना जन्म है, नया जन्म मिला है मुझे, नया जन्म नई सोच, इसलिए पुरानी बातें करने की इच्छा भी नहीं होती है, पुरानी बातें हावी भी नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअल में 2-3 महीने पुरुषार्थ करने के बाद गहराई से अनुभव होता है कि वो पुराना जन्म था, न्यू बर्थ, न्यू संस्कार, नई बातें, पास छूट जाएगा। तो ये पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य लेकर पुरुषार्थ करना। एक बात को अगर सार में हम समझें, अगर हम 1 महीने में आपसे पूछूं, आप में से कोई भी आंसर करना, इस महीने का आपका क्या पुरुषार्थ है, क्या लक्ष्य है पुरुषार्थ का, वो तो है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना या शांत रहना, हल्के रहना, ये सब तो है, पर इस 1 महीने ये क्या है, अभ्यास है। लक्ष्य क्या है इस महीने का आपका, बताए कोई 1 मिनट सोचकर। वैसे 1 मिनट सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने लक्ष्य रखा होगा तो बताइए कि यस ये लक्ष्य है, अगर नहीं रखा हुआ इस महीने का लक्ष्य तो आप बताइए कि कोई लक्ष्य नहीं है, नो लक्ष्य। बताएं क्या लक्ष्य है कोई पुरुषार्थ का या लक्ष्य नहीं है इस महीने का। वैसे तो हमारा है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, लेकिन इस 1 महीने ये जो समय चल रहा है, 6th मंथ चल रहा है जून, तो इसमें आपने 1 महीने का क्या पुरुषार्थ रखा। आप बता रहे हैं लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि 1 महीना ये पुरुषार्थ करना है। हाँ देखो ये सच बोल रहे हैं ना कि नहीं लिया लक्ष्य। दिल से पूछना क्या 1 महीने का लक्ष्य लिया है या अभी बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सी आत्माएं अभी बोल रही हैं लक्ष्य लें पुरुषार्थ का। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, नहीं लिया कोई बात नहीं, 1 महीने का लक्ष्य लीजिए, मुझे इस पुरानी दुनिया से किनारा करना है, किनारा नहीं न्यारा बनना है। किनारा तो नेगेटिव वर्ड है, किनारा मींस दुखी होकर, न्यारा मींस ज्ञान को समझकर, भगवान के प्यार को अनुभव कर, इस दुनिया को अनुभव कर कि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। देखें आंखें खोल कर देखें इस दुनिया को, क्या पड़ा है इस दुनिया में, लड़ाई झगड़ा विकार इसके अलावा है क्या इस दुनिया में, प्यार नाम मात्र प्यार है, मोह समाया हुआ है अंदर, ध्यान से देखिए, दुख ही दुख है। जब तक एक व्यक्ति को दूसरे से वो मिल रहा है जो उसे चाहिए, उसके साथ है, बिजनेस बन गया है, क्या है, सार ही नहीं है इस दुनिया में। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से रिलेशंस नहीं बनाने हैं, संबंध नहीं निभाने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन शारीरिक और आध्यात्मिक देयर इज अ डिफरेंस। जब तक हम फिजिकल दुनिया में खुशी ढूंढते रहेंगे वो टेम्परेरी है। इस दुनिया में कोई भी इंसान खुश नहीं हो पाया है केवल फिजिकल लेवल पर खुशी ढूंढकर, ये समझ लें। ठीक है, आपने पुरुषार्थ का लक्ष्य रखा है, बहुत सुंदर बात है, लक्ष्य नहीं रखा है अब लेना है, अभी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप कह रहे हैं बहुत सारी आत्माएं लिख रही हैं, परंतु इस महीने का लक्ष्य आप में से केवल और केवल 5% ने रखा होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो हमें सच सच्चा बनना है, अगर नहीं रखा है लक्ष्य, स्वीकार करें। सच्चे दिल पर साहेब राजी। एक और हम सुनते हैं, वरदान की शक्ति, स्लोगन। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। सिचुएशंस तो सबके सामने आती हैं, सिचुएशंस सबके सामने आती हैं, परंतु अगर भगवान से वरदान लिए हुए हैं तो वो आग को भी पानी बना देगी। बहुत मतलब बहुत बड़ी परिस्थिति होगी, लेकिन आप आराम से निकल जाएंगे, बाबा के प्यार में समाये हुए रहेंगे, आप पर उसका सेक नहीं आएगा। उसका तरीका है स्पेशली अमृत वेले। पहला तरीका, अमृत वेले बाबा को अपना बना लो, लूट लो उससे जितने खजाने लूटने हैं। दूसरा, अपने अंदर के विकारों को निकाल दो। भगवान से वरदान पाने की विधि, प्यार पाने की विधि, अपने अंदर से विकारों को, किचड़े को बाहर का रास्ता निकाल दो, दिखा दो बाहर का रास्ता। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। बहुत सुंदर मुरली है, भगवान के महावाक्य कितने सुंदर हैं। मल्टी मल्टी मिलियनेयर, ये कितनी सुंदर बात है। बाबा ने कहा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखना मींस रॉयल भिखारीपन। मन को समझा दें, जब भी वो ये कह रहा है, सोच रहा है कि ये प्यार से बोले तो मैं बोलूं, ये रिस्पेक्ट दे तो मैं रिस्पेक्ट दूं, मतलब ये क्या है, रॉयल भिखारीपन है। मैं भिखारी नहीं हूं। कौन हूं मैं? मैं अधिकारी हूं। आप कौन हैं? भिखारी हैं या अधिकारी हैं? वैसे तो हमें ये वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए, पर बाबा ने जो कहा, कहीं हम सूक्ष्म में कोई कार्य किया और ये तो नहीं मांगते हैं कि मेरी थोड़ी सी महिमा हो। क्योंकि अगर एप्रिसिएशन सुनकर अच्छा लगता है तो कोई निंदा करेगा तो बुरा लगना ही है। हमें ऐसा बनना है, मेरी खुशी, मेरा आनंद अविनाशी है, इंटरनल है, अंदर से आ रहा है। वो दूसरा एप्रिशिएट कर रहा है, अच्छी बात है, पर कल को वो निंदा भी कर सकता है। मुझे कहाँ रहना है? सीट पर सेट रहना है। ये बात पक्की कर ले। विस्तार को अगर सार में हम लाएं, मुझे अपनी सीट पर सेट रहना है, मुझे अपने नशे में रहना है। नशा मीन्स अहंकार नहीं, अहंकार नेगेटिव है, रूहानी नशा पॉजिटिव है। भगवान ने जो हमें टाइटल्स दिए हैं उसको बार बार चिंतन करना। तो मैं कौन हूं? अधिकारी आत्मा हूं। सूक्ष्म में भी किसी से मांगना नहीं, ये दे तो मैं दूं, नहीं। वह पत्थर फेंके आप रतन दो। कई आत्माएं प्रश्न पूछती हैं, सामने वाला गुस्सा करे तो हमें क्या करना चाहिए, सामने वाला ईर्ष्या करे तो हमें क्या करना चाहिए, सामने वाला तेज आवाज में बोले तो हमें क्या करना चाहिए। बिना किसी कारण के मुझे कोई क्रिटिसाइज करे, मुझे कोई ब्लेम करे तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसका मैं आपको सिंपल आंसर देता हूं। अगर आप सीट पर सेट हैं, खुशी से, आनंद से भरपूर हैं, भगवान के प्यार का अनुभव कर रहे हैं, फिर आपके मन में ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि कोई गुस्सा करे तो मैं क्या करूं, क्योंकि आप शांत हैं, आप खुश हैं, आपके अंदर अशांति है ही नहीं। जब अशांति है ही नहीं तो आप देंगे कैसे? गुस्सा आपके अंदर ही नहीं है, आप देंगे कैसे? ऐसा बनना है कि मेरे अंदर नफरत है ही नहीं, सामने वाला कैसा भी हो मेरे अंदर तो प्यार ही प्यार है, भरपूर हूं मैं प्यार से। कोई भी आए, जैसे फूल होता है, हमें फूल बनना है, अगरबत्ती बनना है। फूल क्या करता है? सामने कोई कैसा भी आए, गुस्से करने वाला भी आएगा ना, तो फूल क्या देगा? खुशबू देगा या बदबू देगा, बताइए? फूल के सामने कोई आए गुस्सा करने वाला, तो फूल क्या देगा? खुशबू देगा या बदबू देगा, बताइए? क्या लगता है आपको? यस, बाबा ने आज कहा है फूल बरसाओ क्रोध करने वालों पर। तो मैं कौन हूं? रूहानी फ्लावर हूं, रूहानी गुलाब हूं, रूहे गुलाब हूं। कैसा भी है, मेरी नेचर है खुशबू फैलाना, मेरी नेचर है प्यार बरसाना, खुशी बरसाना। और कोई गुस्सा कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, या कोई भी उसके अंदर विकार है, बल्कि हमारे अंदर और रहम भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए। दुखी है आत्मा, परेशान है आत्मा, डिस्टर्ब है अंदर से, मुझे और खुशी देनी है उसको। तो बाबा ने कहा अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। कोई बड़ाई करता है, कोई स्तुति करता है, कोई अच्छा अच्छा बोलता है तो खुश हो जाते हैं, और कोई थोड़ा सा नेगेटिव बोलता है तो क्या हो जाते हैं? बाबा ने जो कहा, जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती, निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं, फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती हैं। संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है, निंदा होती है तो, क्योंकि धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। इसीलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। योगी अर्थात चाहे कोई निंदा करे स्तुति करे, उसकी खुशी इंटरनल है, अविनाशी है। इस बात को डीप रियलाइज करें। चलिए दो मिनट के लिए टिक जाए, सीट पर सेट हो जाए। अपने प्रकाश को देखें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरी खुशी किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी परिस्थिति पर, किसी एप्रिसिएशन पर आधारित नहीं है। कोई मेरी निंदा कर रहा है, कोई मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, बोल रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नेचर ही खुशी है, आनंद है, संतुष्टता है, और ये अविनाशी है, आत्मा का असली स्वरूप है। तो आज से ये कहना बंद, इसने ऐसा कहा इसलिए मैं दुखी हूं, ये सुधर जाए तो मैं खुश हो जाऊं, नहीं, मैं आनंद हूं, मैं प्यार हूं, मेरा असली स्वरूप ही यह है। एक लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, संस्कार मिलाने के लिए। एक बात समझ में आई कि मुरली पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्लो डाउन, कुछ पढ़े, टिक जाए उस पर, अंदर जाने दें उसको। क्योंकि अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन रही, दिमाग के लेवल पर रही, परिवर्तन नहीं होगा। कोई पूछेगा तो आंसर दे देंगे हम कि गुस्सा करे तो क्या करना है, फूलों की वर्षा करनी है, उत्तर तो दे देंगे, पर दिल से जब सामने वो प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगी, सही में सोचिए कोई गुस्सा कर रहा है, क्या दिल से प्यार निकलेगा? चेक करें, बहुत कम आत्माएं हैं जिनके दिल से प्यार निकलेगा। सच सच चेक करके बताएं। एक मिनट टिक जाएं इस बात पर कि कोई आपको बिना किसी कारण के ब्लेम कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। दिल की गहराई से पूछें, ऊपर ऊपर से आंसर नहीं आना चाहिए, हाँ या नहीं, सत्य आंसर दें, नहीं तो नहीं। क्या मन डिस्टर्ब होगा या नहीं, क्या लगता है आपको? कोई गुस्सा कर रहा है, बिना कारण क्रिटिसाइज कर रहा है, सोचिए सिचुएशन है आपके सामने, क्या मन डिस्टर्ब होगा या नहीं? क्योंकि मन डिस्टर्ब होगा तो प्यार नहीं निकलेगा, गुस्सा निकलेगा, दुख निकलेगा, नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलेंगे। मन डिस्टर्ब नहीं होगा तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलेंगे। देखो बहुत अच्छी बात है, कुछ आत्माएं कह रही हैं नहीं होगा मन डिस्टर्ब, लेकिन ज्यादातर कह रही हैं होगा। कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इस बात को पक्का कर लें। लेकिन इसके लिए पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आप जा रहे हैं कहीं समुन्द्र में, वहां पर कोई तूफान आया और जिस शिप पे जा रहे हैं वो डूब रहा है, अब आप कहें कि अब स्विमिंग सीख लें, नहीं, अब स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे, स्विमिंग मुझे पहले सीखनी होगी। ठीक वैसे ही सिचुएशन सामने आ गई, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अब कैसे शांत रहूं? नहीं, जब कोई मन दुखाए तब कैसे शांत रहूं? नहीं, उससे पहले मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, खुद से पूछना होगा कि सही में अगर कोई गुस्सा करे तो मुझे क्या करना चाहिए। चिंतन करें इस बात पर बैठकर, अंदर से उत्तर आएगा, हर इसको पक्का करना है बस। इसको हम पक्का नहीं करते, सुन लिया है, दिमाग की तिजोरी में रख लिया है, दिल की तिजोरी में नहीं डाला है। सब कॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज नहीं गया है कि इस दुनिया में हम सब आत्माएं हैं, मेरा संस्कार अलग है, आपका अलग है, हम सब एक लंबी जर्नी पर हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। सामने वाला बिना किसी कारण के अगर मुझे ब्लेम कर रहा है, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं कौन हूं, भगवान जानता है, बाबा जानता है, बस लॉ ऑफ कर्मा अपने आप काम करेगा। तो धीरे धीरे ये अपने अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर ये परिवर्तन आया है। आज पूरे दिन का लक्ष्य रखें, कल जब मिलेंगे तब तक का लक्ष्य है, पहला, मुझ जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई भी नहीं। ये नशा अगर चढ़ता जाएगा, डिस्टर्बेंस अपने आप बंद होनी शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी बातें लगेंगी, ऐसे लगेगा कि भगवान मिल गया है मुझे, ये छोटी छोटी बातों से मैं क्यों परेशान हूं। नशा चढ़ाना है, स्थिति में ऊपर पहुंच जाना है, ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे तो जो हद की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो बिल्कुल छोटी लगेंगी। उससे मन डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। पहाड़ पर आप बैठे हैं, ऊंची पहाड़ी पर, नीचे क्या हो रहा है उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे आप। तो हमें अपनी स्थिति को बहुत सुंदर करना है। तो कल तक पूरा दिन, फिर आप रिजल्ट बताना 10 में से कि सिचुएशन आई, कितना डिस्टर्ब नहीं हुए, 10 में से कितने मार्क्स देते हैं कि मन एकदम शांत रहा। 10 में से जो सिचुएशन आएंगी तब चेक करना अपने आप को, कुछ सिचुएशंस आएंगी उसका एवरेज निकालना, 10 में से कितने मार्क्स देंगे, प्रैक्टिकल में करते हैं। चलिए, भाग्य के नशे में रहें, आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, स्वयं भगवान की नजर आप पर पड़ी है। नशा चढ़ा लें खुद को, सब दुख दूर हो जाएंगे। ओम शांति। सिचुएशंस तो आएंगी, एक बहन करे नहीं आई तो कुछ ना कुछ तो आएंगी। ओम शांति। 11 बजे भी सेशन है करण भाई जी का, तो आप वो भी अटेंड करें और बस जीवन में परिवर्तन करें। ओम शांति।